हरे कृष्णा। आज का विषय है कर्दम मुनि और देवहूति का पारिवारिक जीवन। भगवान के वर के अनुसार स्वयंभू मनु अपनी पत्नी एवं पुत्री सहित समस्त भूमंडल का भ्रमण करते हुए कर्दम मुनि के आश्रम में पहुँचे। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर सम्मान सहित उनका स्वागत किया। मुनि ने राजा के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात उनके आने का कारण पूछा। राजा के संकोचवश कर्दम मुनि ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके परम धन्य हो गया हूँ। कर्दम मुनि का हृदय से गुणगान कर महाराज स्वयंभू अपने आने का कारण बताते हैं। हे मुनि, कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत क्षुब्ध है। मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयु, शील, गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। यह आपके गृहस्थ जीवन के कार्यों में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि पत्नी को आयु, चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए, अपितु गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य का गृहस्थोचित कार्य केवल इंद्र तृप्ति ही नहीं, वरन पत्नी एवं संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। पारिवारिक जीवन के लिए शास्त्रों में गृहस्थ तथा गृहमेदी दो शब्द बताए गए हैं। गृहमेदी के लिए विवाह करने का अर्थ इंद्रियों की तुष्टि करना है, किंतु गृहस्थ के लिए विवाह आध्यात्मिक कार्यों में उन्नति के लिए है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थ के सारे कार्यों को संभाले, ना कि पति से स्पर्धा करे। पत्नी सहायता करने के निमित्त होती है, किंतु वह अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वह आयु, शील तथा गुण में उसके समान न हो। यहाँ एक दूसरी विशेष बात है कि स्वयंभू मनु सम्राट होकर भी अपनी योग्य कन्या को एक निर्धन ब्राह्मण को भेंट कर रहे हैं। कर्दम मुनि के पास घर की कोई सुविधा भी नहीं थी। यद्यपि वे जंगल में एक कुटिया बनाकर रह रहे थे, वे सुसंस्कृत थे। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर संस्कृति तथा गुण को प्रधानता देनी चाहिए। कर्दम मुनि सम्राट की पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लेती है, किंतु एक शर्त रखते हैं। जैसे ही देवहूति मेरे द्वारा गर्भ धारण करेगी, मैं सांसारिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। कर्दम मुनि अपने आश्रम में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उनके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु वे आजीवन गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताना चाहते थे, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया परिचित थे। रानी शत्रुपा तथा पुत्री देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को जानकर राजा स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त कर्दम मुनि को अर्पित कर दिया। महारानी शत्रुपा ने वर वधु को प्रेम पूर्वक समयोचित अनेक बहुमूल्य भेंटे तथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। आज भी भारत में कन्यादान के साथ दहेज देने की प्रथा प्रचलित है। दहेज में दी जाने वाली भेंटे कन्या के पिता की स्थिति के अनुसार होती है। दहेज तो पिता द्वारा स्वयं की इच्छा से प्रेम स्वरूप कन्या को दिया जाने वाला दान है, जो अनिवार्य है। जहाँ पिता अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाता, वहाँ पर फल तथा फूल ही दिया जाता है। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, भगवान फल तथा फूल से भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ आर्थिक विपन्नता होती है और अन्य किसी प्रकार से दहेज की राशि संग्रह नहीं की जा सकती, वहाँ दूल्हे को प्रसन्न करने के लिए फल तथा फूल दिए जा सकते हैं। विवाह के पश्चात पतिव्रता देवहूति कर्दम मुनि की उसी प्रकार प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी जिस प्रकार भवानी अपने पति श्री शंकर की करती है। देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता तथा आदर के साथ इंद्रियों को वश में करते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसे समस्त काम दंभ द्वेष लोभ तथा मत को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा को देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम मुनि को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले, मैं तुम्हारी अत्यधिक प्रेममयी सेवा से परम प्रसन्न हूँ। लोगों को अपने शरीर से अत्यधिक प्रेम होता है, किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, जिससे तुम भय एवं शोक से रहित विशेष विभूतियों का दर्शन कर सकोगी। यह सुनकर देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई और मुस्काती हुई गदगद वाणी में बोली, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और आप समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि मुझे एक पुत्र प्रदान करेंगे, कृपया उस वचन को पूरा कीजिए। अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से तुरंत ही एक हवाई महल उत्पन्न किया, जो स्वर्गीय सुखों से कहीं अधिक श्रेष्ठ तथा उनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। यह सभी प्रकार के रत्नों से चटिल बहुमूल्य मणियों के खम्बों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाला था। इसमें सभी प्रकार का साज सामान तथा धन था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों से पताकाओं बंधनवारों तथा चित्र विचित्र रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह रेशमी पर्दों एवं आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, से शोभायमान था। उसकी फर्श मरकत मणि दरवाजे हीरों से जटित एवं चबूतरे मूंगे के बने थे। इंद्र नील मणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उस प्रसाद में जहाँ तहाँ जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपने गर्दन उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों के शब्दों से गूंज रहा था। उस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन इत्यादि थे, जो नेत्रों को सुख देने वाले थे। जब कर्दम मुनि ने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि उसके हृदय की बात जान गए। वे जान गए कि यद्यपि देवहूति इस ऐश्वर्य को देखकर प्रसन्न है, वह अपने कांतिहीन दुर्बल शरीर के कारण अप्रसन्न है। अतः उन्हें कहा, प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। और जैसे ही उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से युक्त सरोवर में डुबकी लगाई, सरोवर के अंदर 1000 कन्याएं थी, जो अपनी किशोर अवस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थे। उन्होंने देवहूति को बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। तब उन्होंने उसे श्रेष्ठ तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया, जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर आसव दिए। देवहूति ने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार कर्दम मुनि तथा देवहूति ने अनेक वर्षों तक उस विमान पर सुख भोग किया। इसके पश्चात वे अपने आश्रम में लौट आए और उन्होंने देवहूति की इच्छा पूर्ति हेतु स्वयं को 9 रूपों में विभक्त कर अनेक वर्षों तक उसके साथ विहार किया, जिससे देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका अंग अंग सुंदर था और उनके शरीर से लाल कमल जैसी सुगंध आ रही थी। हरे कृष्णा। अगर आप चाहते हैं ऐसे धार्मिक मैसेजेस हर दिन आपको प्राप्त होते रहे, तो अपने नाम और शहर के साथ 9987949494 9987949494 स्कॉन डिजायर ट्री के नंबर पे मैसेज करें। धन्यवाद।